चलिए इंशा अल्लाह ताला आज हम शुरू करेंगे रिव्यू थोड़ा पहले, इसलिए क्योंकि आप लोगों का काफ़ी सारा रिव्यू के लेसन्स हैं जो बाकी हैं। इंशा अल्लाह ताला हम किताबुल मुसाकात से जहां हमने ख़त्म किया था वहीं से दोबारा आज शुरू करेंगे। आप ज़रा सबको इन्फॉर्म कर दें कि रिव्यू शुरू हो चुका है ताकि सब लोग आ जाएं। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, क्योंकि अगर इतने कम लोग आएंगे रिव्यू सेशन में कि मुझे फिर समझ में नहीं आएगा कि किससे क्वेश्चन करूं मैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका। फिर माइट एज वेल कि मैं फिर इसको ख़त्म ही कर दूं और रिव्यू हुआ ही ना करे। अगर आप लोग समझते हैं कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह सिर्फ क्लास ही हुआ करेगी और मैं आपको टेस्ट दे दिया करूँगी इंशाल्लाह एवरी नाउ एंड देन। जब भी मुझे होगा कि अब कुछ चैप्टर्स जमा हो गए हैं तो फिर आपको टेस्ट दे दिया, क्योंकि देखें इसका फायदा नहीं है अगर कोई आए ही नहीं और इतने कम लोग आए कि आज मैंने इसीलिए 1 घंटा पहले का टाइम निकाला। मुझे भी बहुत सारे काम है, लेकिन मैंने इसलिए निकाला ये टाइम कि आपका काफ़ी सारा जमा हुआ हुआ है और ज़रूरी है कि हम उससे गो थ्रू कर लें। लेकिन अगर नहीं आप समझते कि इसकी ज़रूरत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अच्छा मेरी तो एक जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग बताइए कि अगर आप लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए या क्या समझते हैं कि नहीं ज़रूरत है इसकी, क्योंकि 4-6 लोगों से 8 लोगों से तो नहीं रिव्यू हो सकता ना। अच्छा और भी लोग बताएं, कोई आप लोगों के ऊपर वो नहीं है, कोई इसमें मैं बुरा नहीं मान रही, कि मैं आपको मतलब बहुत ऑनेस्टली पूछ रही हूँ कि अगर नहीं है तो कोई इसमें मेरी नाराज़गी नहीं है। मैं वैसे आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि देखें मुझे भी वक्त निकालना पड़ता है ना, फिर आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं, फिर सब चीज़ को मैं देखती हूँ, फिर वरना फिर आप एक ही क्लास यानी आपकी 1 घंटे की सिर्फ हदीस क्लास ही हुआ करें, तो ये पहले का खाम खा हम बैठे हैं और वो और बाकी लोग सिर्फ इतने लोग ही चाहते हैं। ये बाकी लोगों का क्या ख्याल है, ऑनेस्ट ओपिनियन दें अपना, कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। अगर नहीं टाइम निकाल सकते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आप समझते हैं कि ठीक है, जो लोग आज आए हैं वो भी अपना ओपिनियन दे दें, यहाँ पे लिख दें, और जो नेक्स्ट टाइम आएंगे, काफ़ी लोग आज नहीं आए हुए, जो नेक्स्ट टाइम आएंगे वो भी फिर अपना बता दें कि अगर वो समझते हैं कि ठीक है तो फिर हम चलेंगे, अगर मेजॉरिटी का यही ओपिनियन। और अगर मेजॉरिटी कह रही हुई खामोशी को आपकी यही समझा जाएगा कि आप नहीं समझते कि ये होना चाहिए। अरे आप खामोश हैं, शर्मा के नहीं अगर बता रहे तो मैं यही समझूंगी कि आप भी समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर हम इंशाल्लाह सिर्फ क्लास किया करेंगे। ठीक है चलें जी इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। रहमतुल्लाहि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين. جي ماتش شناز آپ بتائیں گی آئے حدیث نمبر 103. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. हदीस नंबर 1032 से आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहती हूँ ये कि क्या कर्ज ख्वाह कर्ज वापस लौटाने में अपने जिसको उसने कर्जा दिया हुआ है क्या कोई सख्ती कर सकता है, कि कोई सख्त अल्फाज कहे, गुस्सा करे, ऐसे कर सकता है क्या?
नबी करीम सल्लम ने फरमाया था एक यहूदी से जब कर्जा लिया था तो उन्होंने फरमाया था कि उसका हक बनता है कि वो सख्ती से मांगे।
अच्छा और अगर कर्ज लौटाने वक्त ज्यादा हम दे दें वापस तो क्या ये सूद होगा या इट्स ओके?
अगर हम अपनी मर्जी से दे दें तो ये एहसान का दर्जा। رکھتا ہے, لیکن اگر وہ ہم سے مانگے تو پھر وہ سود بنتا ہے جس نے قرض دیا ہے.
اچھا مثلا میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ میں گھر لیتی ہوں جی, میں اپنی خوشی کے ساتھ ان کو نہ اتنے پرسنٹ لوٹا رہی ہوں جب میں واپس کرتی ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟
مطلب
میں یہاں پہ مثلا گھر خریدتی ہوں, اگر میں گھر خریدتی ہوں اور میں کہتی ہوں میری خوشی ہے جی, میں خوشی سے واپس دیتے وقت جو ہے نا اتنے پرسنٹ بڑھا کے میں ان کو لوٹا رہی ہوں, تو کیا اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ سود نہیں ہوگا؟
لیتے وقت نہیں یہ شرط رکھنی چاہیے. اگر بعد میں اگر آپ اپنی طرف سے خود کچھ بڑھانا چاہتی ہے تو اٹس اوکے, لیکن قرضہ لیتے وقت یہ شرط نہیں, لیکن یہ سود میں چلا جائے.
شاباش. یعنی اب بات کس کے اوپر ہی کہ دیکھیں قرضہ جب لے رہے ہیں اس وقت اگر قرضہ دینے والا یہ شرط رکھے کہ واپس کرتے وقت مجھے اتنے پرسنٹ کر کے اپنے اوپر واپس کرنا ہے, تو تب وہ سود بن جائے گا. ہاں اگر دیتے وقت اتنی آپ کو مطلب آپ ایک دوسرے سے اتنا راضی ہیں, اس نے مجھے ٹربل نہیں دی, اس نے مجھے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا, اور آپ اپنی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں بڑی اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے, مجھے میرے اس برے وقت میں اس نے میرا مجھے یہ قرضہ دیا تھا, اپنے طور پہ آپ جو ہے نا وہ لوٹا رہے ہیں اس طرح سے بڑھا کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ویسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو ایون اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اب چونکہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے اب میں ابھی تک اس نے مجھے واپس نہیں لیا, لیکن میں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ اب میں اس کی گاڑی استعمال کر رہی ہوں, میں اس کی چیزیں اور دوسری استعمال کرنے شروع ہو گئی, میں اس کے ساتھ اور یعنی اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, یا اس سے اور اپنے کام لینا شروع کر دیا. مثلا مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے تو اس سے اب میں نے چونکہ قرضہ دیا ہوا ہے تو اب میں اس سے کوئی کام بھی کروا رہی ہوں, ایک ایڈڈ ہو گیا نا. اس نے نہیں مجھے اپنی مرضی سے خوشی سے کر کے کچھ وہ کر رہا, مگر میری طرف سے ایک تقاضا ہے, تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی سود کے اندر آ جاتا ہے. یعنی ایک بزرگ اس قدر اس میں احتیاط کرتے تھے کہ جس کو قرضہ دیا ہوتا تھا اس کے درخت کی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں سود نہ ہو جائے. تو اس میں جو قرض دینے والا ہے اس کی طرف سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی سب کو کہ کب سود بنتا ہے اور کب آپ اپنی طرف سے کوئی دے دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کب جو قرض دینے والا ہے وہ کسی صورت میں بھی قرض دار سے کوئی بھی فیورز نہیں لے سکتا, اس لیے کیونکہ اس نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے. اگر وہ اس سے کوئی بھی ایکسٹرا لے گا, فیور لے گا, تو وہ بھی سود سمجھا نہ جائے, اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا جی شہادی آپ بتائیں گی کہ گروی کیا چیز ہوتی ہے, رہن.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یعنی قرض لینے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز رکھے امانت کے طور پر تو اس کو گروی کہتے ہیں. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرا یہودی کے پاس رکھا تھا.
اچھا کیوں رکھی جاتی ہے؟
یعنی کہ میں اس وقت تک یہ اس شرط پہ کہ میں اس وقت تک یہ رقم واپس کروں.
جی یہ ایک ضمانت کے طور پر رکھی گئی ہے, ہاں کہ میں کل کو واپس کر دوں, ورنہ کیا پتا آپ واپس ہی نہ کریں تو پھر کیا کرے گا وہ. اس لیے وہ گروی کے طور پہ رہن کے طور پہ وہ چیز رکھ لیتے ہیں کہ آپ اتنا کچھ پیش کریں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کیا رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض دینے والا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
نہیں اٹھا سکتا
کسی صورت میں. کوئی ایک صورت ایسی ہو سکتی,
جانور ہو تو جانور سے وہ سواری کا پیدا اٹھا سکتا ہے, لیکن باقی زمین وغیرہ ہو اسے پیداوار وغیرہ آتا ہو تو اسے نہیں.
تو جانور سے بھی کس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا؟
صرف سواری کے لیے, اگر اس کو چارہ کھلائے.
جی بالکل بالکل, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ اس نے جزاک اللہ خیرن کثیرہ چونکہ اس نے اس کو چارہ کھلایا, چونکہ اس نے اس کی دیکھ بھال کی, دیکھیں یہ بھی تو ایک سروس ہے نا جو دے رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, اس کے بھی اس کو پیسے لگانے پڑ رہے ہیں کھانا کھلانے کے, اسی طرح اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کے بھی اس کو ظاہر ہے اس کو کچھ ٹائم لگانا پڑ رہا ہے, تو اس کے عوض اس کے بدلے میں وہ سواری کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے, مثال کے طور پہ اب جو جیسے آپ نے کہا کہ انویر جیولری, تو مثلا جیولری کسی نے رکھوائی ہو تو اس کو اب اس کی تو دیکھ بھال کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, گھر کے کاغذات لوگ رکھوا دیتے ہیں, زمین کے کاغذات رکھوا دیتے ہیں, کوئی اور چیز گروی لگوا رکھوا دیتے ہیں, اپنی مشینری اپنی فیکٹری ہے وہ. اب یہ نہیں کہ جو فیکٹری سے پروڈیوس ہو رہا ہے وہ جی میرا ہو گیا, نہیں وہ اس کا نہیں ہے. اسی طرح اور زمین سے اگر کوئی فصل ہوئی ہے تو وہ میری ہوگی, انلیس کہ وہ وہاں پہ جو بھی چیز ہے اس کے پاس, مثلا جانور ہے یا کوئی بھی اور ایسی چیز ہے جس کی وہ دیکھ بھال بھی کر رہا ہے, جس کی وہ پوری کیئر کر رہا ہے کہ کھانا پینا اس کو, اس کی حفاظت, اس کی ایوری تھنگ اس کی ٹیکن کیئر آف ہے, تو اس کے اوپر ظاہر ہے اس کا مال وغیرہ بھی لگ رہا ہے اور اس کا وقت بھی لگ رہا ہے, تو اس کے اوپر اس وجہ سے وہ اس کے بدلے میں سواری کر سکتا ہے یا اس کا دودھ نکال سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز جو کہ جیسے ایسے نان لیونگ تھنگ یا کوئی جو جن کی کوئی بھی ایسی کیئر کی ضرورت نہیں ہے ان کو رکھ کے اور ان کے پھر اپنے استعمال میں لائے. نان لیونگ تھنگ میں کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ فیکٹری کا اس سے یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کیونکہ فیکٹری کا جو پروڈیوس ہے وہ سارا اس کی محنت اور اس کے اندر کام اور وہ اس نے کیا ہوا ہے جو قرض دار ہے, اس لیے وہاں سے کسی صورت میں جائز نہیں ہے فائدہ اٹھانا. اور دوسری ہمیں جو چیز یہاں سے پتہ چلی, ایک اور پوائنٹ پتہ چلا جو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی, تو آپ کو اس سے کیا پتہ چلا شہادی؟ یہودی کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ رکھوائی,
یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پھر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات.
شاباش, جزاک اللہ خیر من کثیرہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہودی ہے تو اس کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی, عیسائی ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی, یہ مشرک ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی, یہ مغضوب علیہم تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ایسی چیز نہیں تھی. تجارت اور دنیا کے معاملات کے اندر آپ خرید و فروخت کرنا ہے یا اور کوئی دنیا کے معاملات ہیں ان کے اندر اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرتے ہیں, مثلا جاب آپ کسی کے پاس کر رہے ہیں اس طرح سے, تو بزنس ٹرانزیکشن تو ہے ہی جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے, جاب بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, یا اور کوئی سروسز آپ لے رہے ہیں کسی سے, کسی کو اپنے پاس مزدور رکھا ہے, تو اگر غیر مسلم سے بھی لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پہ جب ہم غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہماری ایوری ڈے کی ڈیلنگ کے اندر آپ سودا سلف لے رہے ہیں, آپ کسی دکان پہ جا رہے ہیں, آپ کہیں اور کوئی وہ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کسی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کے معاملات کر لے. جی اگلا ہے, جی نائید آنٹی آپ بتائیں گی, بیع السلم جو بیع ہے باب السلم, اس میں بیع السلم کیا ہے؟
بیع
السلم کیا ہے اور اس میں اور بیع السلف میں فرق بھی بتائیے گا.
بیع السلم کا مطلب ہے
پیلٹاک کی میوٹ کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. جی
لوگ جو کھجور میں دو دو تین سال تک کے لیے کام کرتے تو بیع ہوتی تھی, اس کو بیع سلم کہتے ہیں. تین سال تک کام کرا ہے اس کے مقررہ وزن اور مقررہ مدت بھی ٹھہراتے تھے کہ اس کا اس سے اب تک فائدہ ہوگا, اس کو بیع سلم کہتے ہیں.
نہیں یہ تو حدیث ہی آپ نے پڑھ دی ہے لیکن ایسا نہیں, اس اس کا معنی بتائیں. اچھا اب آپ سنیے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے, آپ غور سے سنیے. جی شازیہ ناصر آپ بتائیے کہ بیع سلم کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. بیع سلم یہ ہے کہ چیز موجود نہیں ہے مگر ہم چیز کا سودا کر لیتے ہیں, اس کی قیمت پہلے سے طے کر دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں کہ چیز بعد میں دے دیں گے یا لے لیں گے. صرف اس میں ایک شرط ہوتی ہے, ٹائم پیریڈ اور وہ چیز اور اس کی مقدار ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اور بائیس سلف بھی یہی ہے جو بائیس سلم سلم ہے.
جی شاباش.
ایک چیز کے دو نام,
یعنی قیمت آج فکس ہو گئی, چیز بھی آج فکس ہو گئی, وہ کتنی کوانٹیٹی ہوگی, کتنے ٹائم کے بعد دی جائے گی, ڈیلیور کی جائے گی, مثال کے طور پہ. اچھا جزاک اللہ شازیہ. مثال کے طور پہ میں اپنے آن لائن اپنے کوئی چیز کی خریدتی ہوں, میں نے اس وقت پیمنٹ کر دی ہے آن لائن, اور ابھی وہ آنے میں وہ کہتے ہیں کہ 60 days لگیں گے, 30 days لگیں گے, اتنے دن لگیں گے وہ آج, لیکن میں نے ان کو اپنے کریڈٹ کارڈ پہ یا اپنے کس طرح سے بھی کر کے میں نے ان کو پیمنٹ کر دی ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ آج تو آپ سے اس نے قیمت لے لی ہے, سودا بھی آپ کو نہیں ملا, کہ دیکھیں دکان پہ تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے ایک طرف پیسے دیتے ہیں, دوسری طرف اپنا بیگ اٹھا کے شاپنگ بیگ اور لے آتے ہیں. تو لیکن جب آپ فار ایگزامپل آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کئی دفعہ ایسے کہتے ہیں کہ 15 days کے بعد ڈیلیوری ہوگی, 20 days لگیں گے اس میں, یا کہیں دور سے آ رہی ہے, یا آج کل شاپنگ سیزن ہے, یا اس طرح ہے, تو ہم اتنے عرصے میں آپ کو بھیجیں گے. لیکن آج پیمنٹ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ہو چکی ہے, انہوں نے پیمنٹ اپنی لے لی ہے, تو کیا پھر یہ صحیح ہے؟ ہاں جی صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی نسرین آپ بتائیے گا کہ یہ جو قسم کھا کے سودا بیچنا ہے, کیا یہ درست ہے کہ قسم کھا کے, جی قسم سے میں نے اتنے کا لیا ہوا, اتنی تو میری جی خرید بھی نہیں ہے, اتنی تو ہمارا یہ نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی یہ مطلب جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے چیز تو جلدی بک جائے گی لیکن برکت نہیں ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا.
اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر مثلا واقعی میری بات سچی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ واقعی میری اتنی خرید نہیں ہے, میں پھر سچی قسم کھا رہی ہوں, سچ کہہ رہی ہوں کہ واقعی میں نے تو اتنے کی لیے بھی نہیں ہے, تو اگر میں اس میں قسم کھا لوں تو کیا کوئی حرج ہے؟
غلط قسم کھانا تو ہے ہی گناہ نا, اگر صحیح قسم بھی کھا کے بیچیں تو برکت ختم ہو جائے گی.
شاباش. ہاں سچی قسم بھی نہیں کھانی, جھوٹی قسم تو کبھی کھانی ہی نہیں ہے نا, وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں کھانی. قسم نہ کھانے سے مطلب یہ یعنی کہ قسم کھانی ہی نہیں ہے, سچی ہو جھوٹی تو اللہ معاف کرے تو سخت گناہ ہے, مگر ایسی صورت میں قسم سچی بھی نہیں کھانی. آئی تھنک میرے کنیکشن کٹ گیا ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے میں پھر ملا لیتی ہوں, ذرا تھوڑی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا. اچھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ یہ بات ہوتی ہے جب آپ لوگ بازار جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ, یہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا, یہاں پہ تو ایسے ہی آپ سودا لے لیتے ہیں اور کوئی چونچرانی ہوتی, مگر ہمارے ملکوں کے اندر چونکہ بہت زیادہ بارگیننگ ہوتی ہے نا, جب بارگین ہوتی ہے تو پھر ہی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے کی تو ہماری خرید نہیں ہے, ہمارا ایسے نہیں بہنے. الحمدللہ اب امید ہے آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی ہوگی میری. جی مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیجیے, اب امید ہے آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ. جی تو ہمارے ملکوں میں چونکہ بارگیننگ ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ قسمیں وسمیں کھائی جاتی ہیں, جہاں پہ ایک فکس ریٹ ہے, انہوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے اور آپ کو وہی لینی ہے, تو وہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کی قسم وسم کی بات ہی نہیں ہے. وداؤٹ قسم بھی نہیں کہنا چاہیے, کسی نے چیز لینی ہے تو لے لے, نہیں لینی تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اتنے کی میری خرید نہیں ہے, میرے ایسے نہیں ہے, دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے. اب وہ جو اگر آپ نے اس طرح کی بھی بات کی ہے تو, یا قسم کھا کے, قسم تو ویسے ہی ممانعت ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی تو انسان خام خواہ میں کہتا جائے اتنے کی میری خرید نہیں, اتنے کا میرا ایسے نہیں, اتنے نہیں, بس ٹھیک ہے اگر کسی نے لینی ہے تو لے رہے, نہیں لینی تو اس کو کہیں کہ نہیں اتنے کی تو نہیں میں دے سکتی, بس بات ختم ہو گئی, اتنے میں مجھے نقصان ہوتا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. लेकिन कसम खा के, और वो कसम खाने में ये चीज है ना कि आप दूसरे को चाहते हैं कि वो यकीन कर ले आपकी बात का, और आगे पीछे तो आप कोई बात कहें हो सकता है वो यकीन ना करे और कहे कि ये तो बस इनके बेचने के टैक्टिक्स हैं, लेकिन जब कसम खा लेते हैं फिर दूसरा बंदा कन्विंस हो जाता है और वो आपकी चीज जल्दी खरीद लेता है, तो ये नहीं होना चाहिए जी। नाज़नीन आप बताएंगी शुफा क्या होता है, शुफा क्या चीज है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुफा, शुफा क्या चीज है? अच्छा फिर अब आप सुनिएगा, फिर किसी और से मैं पूछती हूँ। जी शाजिया नासिर आप ही बताइए दोबारा कि शुफा क्या चीज है। जी शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या शाबाश, समझ आई है बात या नहीं आई समझ? नहीं, यहाँ पे लिखे मेन स्क्रीन पे समझ आ गई है बात? हाँ जी, कि जब कोई मुश्तरका चीज हो, एक साथ चीज हो, साथ साथ, यानी मसलन है कि दो लोग पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में फॉर एग्जांपल, और वहां पे वो एक कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा मैं बेचना चाहता हूँ, तो पहले वो अपने दूसरे पार्टनर को कहेगा, चाहे जमीन है, बिजनेस है, व्हाटएवर, बस पार्टनरशिप है ना दोनों में, वो पहले कहेगा कि मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो, अगर तो वो खरीदता है तो ठीक है, अगर नहीं खरीदता तो फिर वो बाहर जाके किसी को बेच सकता है, मगर इससे पहले वो बेच नहीं सकता कि उससे पार्टनर से इजाजत ले लेके अगर या उसको ऑफर कर दे, उसको ऑफर किए बगैर बेचना ये दुरुस्त नहीं है। फर्स्ट ऑफर किसको होगी? जो पार्टनर होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर कोई बाहर वाला होगा तो उसको फिर ऑफर की जाएगी। जब ऐसा होता है कि साथ वाले को तो ऑफर नहीं की जाती और बाहर वाले जाके किसी को बेच दी जाती है या बेचने की कोशिश की जाती है किसी और पार्टी को, तो फिर अदालतों में आप सुनते होंगे हक्के शुफा दायर कर दिया। तो वो हक्के शुफा क्या है कि वो कहता है कि जी मुझे तो इसने कहा नहीं और इसने जाके बाहर दूसरे को बेची है या बेचने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये शुफा है। और हक्के शुफा क्या है कि उसका हक था जो दूसरा था पार्टनर। अच्छा जी उम्मे मलीहा आप बताएंगी कि अगर दो हमसाए हैं और दोनों की एक ही दीवार मुश्तरिक है, एक ने तो जाहिर बनाई है दूसरे ने बनाई नहीं, दूसरे ने अपनी छत डालनी है, क्या वो इसकी दीवार को यूज करके छत डाल सकता है?
वालेकुम अस्सलाम।
जी ये शर्त है कि दीवार को यूज कर सकता है लेकिन उसका नुकसान ना करे, लेकिन हम तो अक्सर कहेंगे कि नहीं यूज कर सकता इसलिए कि ये मेरी दीवार है, अगर तुमने अपनी छत डालनी है तो तुम अपनी दीवार खड़ी करो, मेरी दीवार क्यों यूज कर रहे हो, हम तो किसी को एक कील भी नहीं ठोंकने देंगे अपनी दीवार के अंदर। जाहिर ही बात है जब कोई छत डालेगा या कोई इस तरह से और इस्तेमाल करेगा तो उसके यूजेज में तो आएगी ना वो, अब वो उसके ऊपर कोई बेल चढ़ा रहा है या उसके ऊपर कोई और चीज ऐसे कर रहा है तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो यूजेज होगा, नुकसान नहीं पहुंचाए मगर वैसे यूज कर सकता है फायदे के लिए अपने, मगर दीवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरे हमसाये को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी से हमें ये भी पता चलता है हमसाये के हकूक कितने ज्यादा है कि हालांकि दीवार दूसरे की है लेकिन यूज ये चुके कर रहा है, इससे अंदाजा कीजिए कि उसको अलाउड है चीज, हालांकि उसकी नहीं है, उसको अलाउड है कि वो यूज कर ले, और यीस को अलाउड नहीं कि ये कहे कि तुम अपनी अपनी बनाओ, मेरी वाली क्यों बना रहे हो, इसके ऊपर क्यों यूसेज कर रहे हो। तो इससे हमें हमसाईगी के हकूक जान लेने चाहिए कि कितने ज्यादा हैं। छोटी छोटी बाज दफा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे यही जैसे मैं आप कह रही हूँ कोई बेल चढ़ानी है, कोई और ऐसी कोई चीज है तो आप यूज अगर करते हैं तो उसमें कोई, या कोई और यूज कर रहा है आपकी दीवार तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बारे में अच्छा जी राहत आप बताइए कि जिसने अपनी जमीन जो है दुनिया में किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया नाजायज, या अपनी जमीन में बढ़ा के उसकी जमीन को ऐड कर लिया, तो फिर उसकी क्या सजा है।
क्यामत वाले दिन ऐसे जो कब्जा करता है नजायज तरीके से, ऐसे 10 जमीन नीचे घुसा दिया जाएगा उसको जमीन के। कुछ ऐसे ही मतलब 10 मैं कह रही हूँ, कुछ बहरहाल ऐसे ही है कि उसको जमीन के नीचे मतलब जैसे दंस दिया जाएगा, जमीन के अंदर वो चला जाएगा नजायज तरीके से जुड़े, क्योंकि ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो सरासर मतलब
जुना है। ये किसी और उसकी सजा थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किसकी थी। ऐसा है जमीन के अंदर धसा देने वाली बात, मगर जो हमें इस बारे में पता चलती है ना कि नाजायज जमीन हथिया लेना किसी की, इवन एक बालिश्त भी अगर किसी की जमीन को हथिया लिया, हथियाते कैसे हैं ये पता है आपको, वो क्या करते हैं कि जैसे अब मेरी बाउंड्री वॉल मसलन यहाँ पे है 10 फुट पे है घर से, तो अब मैं 11 फुट पे जाके अपनी बाउंड्री वॉल शुरू कर लूं, या अभी हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि वो जी गवर्नमेंट की जमीन है ना, कोई बात नहीं है, बाहर की जमीन तो गवर्नमेंट की है, अब अपनी फेंस इतनी बाहर तक लगा ली या अपनी बाड़ इतनी बाहर तक लगा ली कि गवर्नमेंट के हिस्से को भी अपने हिस्से के अंदर शामिल कर लिया। अब वो है तो सरकारी जमीन, चाहे किसी इंसान की नहीं है, है तो आपकी नहीं ना, किसी का भी हिस्सा ले लिया। इसी तरह देखा कि साथ वाले जो ये 3 बच्चे इनका बाप तो है नहीं, तो कौन किसने पूछना है, अगर मसलन एक दो कदम भी थोड़ी सी बढ़ा के अपनी बाड़ थोड़ी आगे लगा ली, अपनी फेंस थोड़ी आगे लगा ली, या पेपरों में हेरा फेरी करके इधर उधर कर दिया, ये सब जमीन हथियाने के तरीके हैं। इसी तरह एक और भी तरीका होता है जमीन हथियाने का, कि जब अपने हिस्से से ज्यादा किसी और के हिस्से को भी अपने हिस्से में शामिल कर लेना, विरासत के मामलात के अंदर चाहे हो, चाहे आपने किसी और तरीके से कोई स्टेट एजेंट है आप, कोई रियल्टर हैं आप, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ज़मीन के कागजात में हेरा फेरियाँ कर लेते हैं, नाम किसी के कर किसी और ने अपने नाम ली, फिर इसी तरह और तरीके हैं आजकल वहाँ पे किसी की ज़मीन खाली अगर पड़ी भी है, आपने अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हर एक को इस चीज से, मसलन किसी ने लिया हुआ कोई प्लॉट और वो छोड़ा हुआ वहां पे, और कुछ दिन बाद आप देखते हैं वहां पे लोगों ने कब्जा कर लिया, कब्जा ग्रुप है बने हुए उन्होंने कब्जा कर लिया, या वो कब्जा ग्रुप नहीं है तो झुग्गियों वाले आके गरीब लोग हैं उन्होंने अपने जो है ना वो झुग्गिया वहां पे बना ली है, अब वो छोड़ नहीं रहे, अब वो कह रहे हैं 3 लाख दोगे तो फिर हम छोड़ेंगे, इतना करोगे तो हम छोड़ेंगे। सब तरीके ये जमीन हथियार लेने के हैं। तो बताया गया एक प्लॉट या एक, ये तो बाद की बात है, या बाज दफा ऐसे होता है कि आपको विरासत में कोई जमीन मिली है किसी दूसरे वारिस ने, मसलन बहने हैं तो भाइयों ने ऊपर कब्जा कर लिया, अब वो छोड़ ही नहीं रहे, कह रहे हैं बस इतने इतने लाख लेके तुम फारिग हो और हमसे ना अपना हिस्सा मांगना इसके बाद। तो यानी ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं, अगर आप देखिए कोई एक चीज ऐसा नहीं है कि कोई जाके जमीन हथिया लेने का मतलब यह है कि जी ने किसी ने बस थोड़ी सी जमीन दूसरे की ले ली अपनी जमीन में शामिल कर दी, तो ये नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। कागजात के कागजात बदल दिए जाते हैं, किसके नाम पे होती किसी और के नाम पे होती, आप बाहर रह रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता कौन कब्जे करके भी बैठ गया, डिफरेंट तरीके हैं हथियाने के, और कभी कभी हमारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो ही विरासत के अंदर हेरा फेरियां करके और कब्जे कर लेते हैं और उसके बाद देने का नाम ही नहीं लेते और कहते हैं कि नहीं अब ये तो बस ठीक है, अब आप तो बाहर रहते हैं आपको क्या जरूरत है, अब ये जरूरत है या नहीं है दूसरे को वो तो उसकी जमीन है, लेकिन वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। जी मस्जिद भी बना लेते हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि बाज दफा मस्जिद बनाने के लिए सोते नहीं जी, अल्लाह का घर है, अब क्या इसके ऊपर आप तुम्हें तराज करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबी तामीर की थी, देखा था दो यतीम बच्चों से खरीदी थी, हालांकि वो देने को तैयार है, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं आप ले लें ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कीमत दे के खरीदी। नाजायज कब्जा तो दूर की बात है, उनके ऑफर करने पर भी फ्री में नहीं ली। तो हम कैसे सोचते हैं हम ये मस्जिद बना रहे हैं जी, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, निकी का काम हराम जमीन लेके फिर उसके ऊपर करना, तो उसकी सजा क्या बताई गई? एक बालिश्त की सजा है ये प्लॉटों की सजा नहीं मैं कह रही। हम तो प्लॉट के प्लॉट भी हमारे यहाँ हजम कर लेते हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बालिश्त, बालिश्त खोले अपनी हाथ को पूरा खोले, ये एक बालिश्त है, सिर्फ इतनी सी जमीन भी किसी की हत्याई होगी। सात जमीनों का तौक, तौक क्या होता है? ये जो गले के अंदर डाले जाते हैं, मुजरिमों के गलों में देखे हैं कभी तौक पड़े गए? हैवी सा वो जैसे हार होता है समझ लें, इस तरह से गोल सा होता है तौक जो उनकी गर्दन में डालना होता है। एक छोटा सा हार नहीं, एक लोहे का बैंड नहीं है, सात जमीनें सोचे उनका तौक उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा तो उस बंदे की हालत क्या होगी? सोचे क्या हालत होगी। सिर्फ ये एक बालिश जमीन हथियाने पे है, और जो लोगों की कितनी जमीनें हथिया लें, भाई भाई की हथियार है, भाई बहनों की हथियार है, और अगर वो मांगे अपना हिस्सा तो फिर उसके ऊपर इतना शोर हंगामा के खुदा की पनाह है कि वो बेचारे खुद ही चुप कर जाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या सजा होगी सोचें जरा। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अच्छा जी, अब ये बताइएगा कि अगर इरम आप बताइए कि अगर किसी ने रास्ता देना हो तो कितना रास्ता देना चाहिए? अगर किसी को चाहिए रास्ता, दो लोगों की जमीन है और बीच में से रास्ता देना है तो कितना देंगे?
सात बारिश में ये सात के बराबर देना चाहिए इनको
जी, सात हाथ। देखिए बालिश,
सात हाथ,
शाबाश, सात हाथ और बालिश्त में थोड़ा सा फर्क है, वो नोट कर लें, क्योंकि अगर हम हाथ कहेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट है और बालिश थोड़ी डिफरेंट है। बालिश को देखें, ये आपका ये जो हाथ है ना, इसको खोलूंगी, ये बालिश्त है। अब जब हम कहते हैं सात हाथ, तो हाथ क्या है? ये उंगलियों की टिप से लेकर एल्बो तक, कोहनी तक, ये हाथ है, ठीक है? तो सात हाथ, इतने हाथ लगाएं तो ये तो काफी ज्यादा सात हाथ बन जाते हैं, और अगर सात बालिश्त लगाएंगी वो तो गुजरने का रास्ता भी नहीं बनेगा शायद एक बंदे का, ठीक है? तो सात हाथ तकरीबन एक ही आदमी का हाथ, यानी यहाँ से फिंगर की टिप से लेके एल्बो तक हाथ कितना होगा? तकरीबन एक फुट, तो एक फुट से ज्यादा ही, बल्कि एक फुट से सवा फुट हो जाएगा। तो ये इतने फुट का रास्ता देना जरूरी है, ठीक है? अगर दो लोगों झगड़ा पड़ जाए कि मैंने इतना नहीं देना, तुम इतना दो ना, मैं क्यों इतना दूं, तो फिर दोनों के लिए जरूरी है कि इतना फासला तो छोड़ना है, डेढ़ फुट कह लें, सवा फुट कह लें, मतलब यानी इतना तक तो लाजिम होगा। लेकिन बालिश्त जो है ना, वो तो सिर्फ एक ये हैंड है, बस दैट्स इट। तो इसलिए दोनों का इसके ऊपर लिख लें आपके हाथ का मतलब यहाँ पे क्या। अब हम देखते हैं किताबुल फराइज, किताबुल फराइज को हम देखते हैं। यहां तक हमारी ये तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी तहसीन, आप बताएं कि फरीजा के माने क्या है और यहाँ पे क्या मुराद है फरीजा से? वालेकुम अस्सलाम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ फरीजा का मतलब है फर्ज, जो चीज अल्लाह ताला ने फर्ज कर दी है, और यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मीरास के अहकाम है, जो विरासत के हिस्से हैं उसके बारे में बात है, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद कुरान में हमें बता दिया है, कुरान हदीस हमें बता सकती है कि जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुछ लोगों के लिए मुकर्रर कर दी।
तो फरीजा का मतलब क्या होता है वैसे?
फरीजा यानी कि फर्ज की भी चीज जो अल्लाह सुब्हान तआला ने फर्ज कर दी, लाजिम कर दी।
हाँ, जब हम डेफिनेशन बताएंगे ना तो हम कभी वही वर्ड को दोबारा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर इसको किसी को फर्ज का ही नहीं माना पता तो फिर वो क्या कहेगा। मतलब जो लाजिम हो गई, जो जरूरी हो गई, जो फिक्स हो गई, जो मुकर्रर हो गई, वो चीज। और यहाँ पे कौन सी है जो मुकर्रर हुई है चीज? यहाँ पे जो मीरास के मिसाइल हैं वो भी जो अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हिस्से, इसलिए उनको फरीजा कहते हैं। वो अल्लाह की तरफ से फिक्स्ड है ना, वो अल्लाह की तरफ से फर्ज है कि उसी तरह उनको तकसीम किया जाए, اور اس کے اندر کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیرن. جی فرزانہ آپ بتائیں گی یہ جو پہلی حدیث ہے 1041 کہ میراث اس کے حقداروں تک پہنچا دو اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام.
یہ دلیل ہے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے علاوہ جو بچے کا وہ اصفا کی دلیل ہے.
ٹھیک ہے,
وہ جو قریب ترین جو مرد ہوگا جو فکس حصے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھا جائے گا کہ قریب ترین کا کون مرد ہے, تو وہ باقی جو بھی حصہ بچے کا دینے کے بعد جو بھی فرائض میں جو کہ فکس حصے ہیں اس کے بعد جو بچے کا وہ اصفا کی بنتے ہیں
شاور. یعنی یہ مجھے سب لوگ بتائیں گے کہ سب کو یہ حدیث سمجھ آ گئی بھی, پیل ٹاپ پہ ذرا مجھے بتا دیں یہ حدیث سب کو سمجھ آ گئی بھی. اچھا الحمدللہ. یعنی فکس حصے کون سے ہیں؟ میراث کے حقداروں پر پہنچا دو, یعنی جو فکس حصے جیسے انہوں نے کہا کہ فکس حصے ہیں فرائض, الحق الفرائض بہ اہلھا, فرائض کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو فرائض کیا ہیں؟ جن جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ آدھا اس کو, 1/8 اس کا ہے, اس کا ڈبل ہے, سوری اس کا اتنا ہے وہ, یا چوتھا حصہ ہے یا چھٹا حصہ ہے یا آٹھواں حصہ ہے, اس طرح باقاعدہ فکسڈ حصے ان کی ریشو بتا دی گئی ہے, وہ ان تک پہنچا دو. اور جو باقی بچے اب ان تک تو پہنچا دیا ہے, اس کے بعد جو باقی رہ گیا وہ کس کا ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون ان یور فیملی نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے جب ان کو دے دیا ہوا تو اس کے بعد جو باقی بچ رہا ہے وہ اس کو ملے گا یا ان کو ملے گا جو قریبی مرد عزیز ہے. ٹھیک ہے, نہیں 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 فرینڈ یا ریلیٹو نہیں, قریبی مرد کا مطلب ہے ریلیٹیوز میں سے جو کا سب سے قریب ہوگا. ٹھیک ہے, فرینڈ نہیں اس کے اندر آ رہا کوئی بھی. ہاں آصفا جو ہے نہیں, یہاں پہ تو نہیں یہ بتایا گیا کہ آصفا قریبی جو ہوگا, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو باقی لوگوں کو ملتا ہے تو اس کے اندر اگر ایک ہی لیول پہ ہیں, مثال کے طور پہ بہن بھائی ہیں تو بہن کو بھی ملے گا. یعنی یہ تو اس کا ہے جو باقی بچ جائے اس سے, مثلاً بیٹیوں کو مل چکا ہے, ان کے حصے تو مقرر ہو چکے تھے, ان کو مل چکا ہے, آپ کوئی بیٹا نہیں ہے, تو اب ہے کیونکہ سب سے قریبی آدمی کو دیکھا جائے گا کہ کون ہے. کزن بھی ہو سکتا ہے, گرینڈ سن بھی ہو سکتا ہے کچھ صورتوں میں, مگر وہ ہیں کہ نہیں نہیں وائف ریلیٹو تک نہیں جاتا. وائف کے ریلیٹو نہ, آدمی فوت ہوا تو بیوی کے اب آگے ریلیٹوز کو دیکھا جائے وہ نہیں, اس کے اپنے ریلیٹو بھی ہوں گے. مثال کے طور پہ اس کے چچا وغیرہ آ جاتے ہیں اس کے اندر, اس کے اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں اس کے اندر, بہن بھائی بھی نہیں ہے تو آگے پھر چچا وغیرہ آ گئے, یہ آ گئے اس طرح, ورنہ ویسے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں بننا تھا. اچھا جی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. نہیں بہن بھائی کیسے, بہن بھائی تھوڑی وارث ہے, ایک آدمی کی اولاد بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی ہیں, وہ ہیں تو وہی وارث بنتے, بہن بھائی تھوڑی وارث بن جاتے. اچھا جی کس کی باری نہیں آئی ہے ابھی تک؟ اچھا جی ٹھیک ہے, راجیہ آپ بتائیں گی کہ کلالہ کون ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں احکامات کس موقع پہ نازل ہوئے تھے کلالہ کے بارے میں؟ اچھا یہ جس وقت حضرت, جزاک اللہ خیرن, یہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے وہ بہت سخت بیمار تھے تو اس وقت یہ احکامات نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کہ جب ان کو اپنے مال کی فکر ہوئی تھی کہ اب کیا اس کا کیا جائے تو اس وقت یہ احکامات نازل ہوئے تھے. اچھا اور کوئی جو رہ گیا یہاں پہ جن سے میں نے نہیں, 848 248 یہ کون ہے؟ अपना नाम बताएंगी? 848248।
जी अस्सलाम वालेकुम, अमरीन।
अच्छा अमरीन जी, अमरीन आप बताएंगी कि क्या माल की वसीयत करना लाजिम है हमारे लिए?
माल की वसीयत करना लाजिम नहीं है।
अच्छा।
लेकिन अगर अगर कर दी जाए तो बेहतर है। पहले पहले करना मतलब रेकमेंडेड है, जैसे पहले पहल वो लाजिम थी लेकिन बाद में नहीं रही।
पहले पहल क्यों लाजिम थी और बाद में क्यों नहीं रही? अच्छा चले मैं आपको बता देती हूँ, ये इस चीज को सही से समझ लें आज इस बात को कि देखें पहले शुरू इस्लाम के अंदर लोगों की अपनी चॉइस थी, वो किसको क्या देते हैं। मसलन मैं कहूँ कि भाई मेरे माँ बाप को इतना दे दिया जाए, मेरे बेटे को इतना दे, मेरे फलाने को इतना दे, मैं खुद ही डिसाइड करूँ मैंने किसको कितना देना है। ओके, ये सब लोगों के लिए था, अब उनकी अपने ऊपर उनकी चॉइस थी तो वो वसीयत कर सकते थे। तो उनको कहा गया आप वसीयत कर दो ताकि पता चले भाई किसको कितना देना, आप कितना चाहते। उसके बाद अल्लाह ताला ने अहकामात उतार दिए विरासत के, और अल्लाह ताला ने खुद ये फैसला फरमा दिया कि किसको कितना दिया जाएगा। अब इसके बाद किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उन अहकामात को चेंज करके अपनी मर्जी से हिस्से देता रहे कि मैं इसको इतना देना चाहती हूँ, मैं अपने फलाने बच्चे को इतना दूंगी और फलाने को मैंने इतना देना। ये अब हमारे हाथ में नहीं है। तो अब वसीयत की क्या शरई हैसियत रह गई जी? राशिदा कालिया आप बताएंगी कि अब वसीयत की क्या शरई हैसियत है? ठीक है, अच्छा तो यानी वन थर्ड हिस्से में यानी वो वसीयत कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। और ये वसीयत किन लोगों के लिए की जा सकती है?
वसीयत किसी के लिए भी की जा सकती है, जैसे किसी अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब उसके लिए भी दे सकता है, कोई इस्लामी बंदा देना चाहे, लेकिन अपने वन थर्ड हिस्से दे सकता है, अदरवाइज नहीं।
अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मेरी वसीयत है कि मेरे बेटे को यानी कुछ ये मेरे जेवर वगैरह ये वगैरह ये वन थर्ड में से है, मैं इसकी वसीयत करना चाहती हूँ कि ये भी मेरे फलां बेटे को दे दिए जाए, तो सही है?
नहीं, वारिस के लिए वसीयत नहीं है।
जी ठीक है, वारसों के लिए वसीयत नहीं है, शाबाश। यही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वसीयत के सिलसिले में ये बात को याद रखें कि नंबर वन वन थर्ड में से वसीयत की जाएगी, नंबर टू वारसों के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। देखिए अगर हमें अप्लाई करते हुए इन अहकामात की समझ नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है कि अगर हम इनको बस रख ले कि जो जो कुछ बचेगा वो उसको होगा। अच्छा ये इतना ये वारसों को नहीं की जा सकती, और जब मैं पूछूं अगर आपसे तो आपको समझ ना आए, ये तो अजबर होने चाहिए ये अहकामात। वसीयत कब लाजिम थी, अब क्यों नहीं है लाजिम, किन किन सूरतों के अंदर वसीयत की जा सकती है, जिस वक्त के यानी माल में से कितने हिस्से में से किन लोगों के लिए, विरासत के अहकामात यानी किस तरह से लागू होंगे, ये सारी चीजें आपको खुद अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, वरना ऐसे हदीस रट लेने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। और शुरू इस्लाम में वसीयत करने का हुक्म क्यों था, बाद में क्यों ऑप्शनल हो गया, ये सब पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन एज इट इज मेंशन इन द कुरान, बिल्कुल उनको ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हिस्सा दे दिया, इसलिए वो अब वसीयत में से कुछ भी नहीं पा सकते। ठीक है, विरासत में उनको चूंकि हिस्सा मिल चुका है, वसीयत किसके हक में होगी, जो गैर वारिस है कोई भी आपने जैसे बोला रिश्तेदार गरीब हैं, कोई और आप किसी और चीज में लगाना चाहती हैं तो वो भी वसीयत कर सकती हैं। जरूरी नहीं किसी इंसान को ही दिया जाए, किसी इदारे को भी दे सकती हैं, फलाने इदारे को, फला हॉस्पिटल को, फला इसको मैं देना चाहती हूँ, मेरे बाद इन लोगों को मिलना चाहिए। बहन या उसका बच्चा भी है, सबा बन सकते हैं, नवासा सबा बन सकता है, ये बन सकता है अगर ये, लेकिन इसके सिनेरियोज होंगे, कंडीशंस होंगी, ऐसे ही नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही कह दूं असबा बन सकता है। लेकिन पहले देखा जाएगा कि इसके फलां 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 रिश्तेदार मौजूद हैं, अगर कोई भी नहीं है उनमें से तो फिर वो असबा बनेगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ये पूछ लें कि वो असबा बन सकता है अब जी, जबकि उसका अपना बेटा मौजूद है या अपने और बाप मौजूद हैं या और ऐसा कोई करीबी रिश्ता मौजूद है और लेके तो नवासे को असबा बना दें, ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो वसीयत करे मिसाल के तौर पे, अच्छा पहले मुझे ये पता चले कि यहाँ पे और कोई है जिनका अभी तक नहीं हुआ। ये 7324 10 किसका है? 4108686, ये बताएंगी अपना नाम? 4108686। हाँ जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी।
आंटी आवाज चली जा रही थी।
अच्छा अच्छा कोई मसला नहीं है। अच्छा अब आप ये बताएंगी कि अगर कोई ये चाहे कि मैं चूंकि अपने फलां बेटे को बहुत नाफरमान, बहुत उसने माँ बाप के साथ बुरा किया, तो आप नहीं चाह रही कि उसको विरासत में से कोई हिस्सा मिले, तो क्या इसके अंदर अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से मैं क्या इसको कर सकती हूँ कि मैं इसको आग कर दूँ उसको, या इससे इस हक से महरूम कर दूँ?
नहीं, अल्लाह ताला ने जब विरासत का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है तो चाहे आप उससे नाराज हो या खुश हो तो आपको उसको हक देना जरूरी है।
बिल्कुल शाबाश, यानी उसको हक देना जरूरी है। अब अगर दूसरा केस ले लें, एक बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं उसको चाहती हूँ कि वो डिजर्विंग भी है, गरीब भी है, मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा ज्यादा दे दूँ, विरासत में से इसको मिलेगा तो इतना नहीं मिलेगा, तो क्या मैं उसको अपने तौर पे कुछ ज्यादा दे सकती हूँ? कोई सूरत ऐसी हो सकती है?
आपको कुछ सूरत ऐसी हो सकती है कि विरासत का माल तकसीम करके, जैसे एक ही हम 1/3 के लिए हम किसी और के लिए वसीयत कर सकते हैं तो उसी को हम उस बच्चे को दे सकते हैं विरासत के अलावा।
अच्छा ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको इसका बताती हूँ जवाब। अभी हमने जैसे बात की, इसको अच्छी तरह अपने जहन में नोट कर लें क्योंकि यहाँ पे ही नाइंसाफियां होती हैं, और वो ये कि आप अपने किसी बच्चे को अपनी मर्जी से ना ज्यादा कर सकती हैं ना कम कर सकती हैं। मैंने आपसे आग करने का पूछा, जैसे आप आग नहीं कर सकते ना, इसी तरह आप ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, ना अपने लाड प्यार और मोहब्बत की ऐसे बढ़ाने का कह सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी का पता चला, उन्होंने कहा जी हमारे दो ही बच्चे हैं, अब हमने क्या है, हमने ये वसीयत कर दी है कि हमारे दोनों बच्चों को हमारे मरने के बाद इक्वल मिले, हमारी बेटी को कम है बेटे से, हमारी बेटी इतनी अच्छी, हमारी इतनी फरमाबरदार, इस तरह तो हमारे दो ही तो बच्चे हैं तो हम बस चाहते हैं दोनों को बराबर मिलना चाहिए, हमारे लिए चूंकि दोनों बराबर है। क्या ऐसा किया जा सकता है? व्हाट्सएप इस पे फैल्ट ऑफ पे आप जवाब दें कि क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए क्योंकि आपका हक ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से विरासत के कवानीन के अंदर रद्दो बदल कर सके, ना इजाफा ना कमी। हाँ एक सूरत सिर्फ है कि जिसमें आप कुछ कर सकते हैं अपने ऐसे बच्चे के लिए। यास्मीन आंटी के लिए खोलें लाइन, कौन सी लाइन पे हैं वो जी, उनकी लाइन खोले कहाँ पे, मुझे उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा।
वरहमतुल्लाह
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या करें अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किसी बच्चे को ज्यादा दें, तो क्या कर सकते हैं हम? कोई सूरत हो
मतलब
सकती है?
मुझे मालूम है कि एक तो आपने जो पूछा था कि हम आप नहीं कर सकते,
हाँ 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 बिल्कुल, वो तो उसको मिलेगा ही नहीं ना, वो हमने नहीं आग करना, वो अल्लाह ताला ने मुर्तद के लिए फरमा दिया है कि वो वारिस ही नहीं बन सकता, मोमिन काफिर का वारिस नहीं, काफिर मोमिन का वारिस नहीं, तो हमें आग करने की जरूरत ही नहीं, वो वारिस है ही नहीं, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है,
जो आपने अभी सवाल की थी सूरत में, जैसे अगर हमें पता है कि हमारा कोई बहन भाई गरीब है, मगर इससे तो पूरे लगेंगे, मगर अगर आप अपने उन बच्चों से इजाजत दे के उसको देना चाहे तो देगा।
क्या आप कह रही हैं, मुझे नहीं बात समझ आई।
आपने वो
वो बहन भाई को छोड़ दे, मेरे वारसों में से मतलब औलाद में से ही किसी को चाह रही हूँ कि एक बच्चा जरा कमजोर है, चाह रही हूँ कि इसको जरा ज्यादा मिल जाए, तो क्या मैं अपनी विरासत में से या कुछ, आपने कहा विरासत में से तो कर ही नहीं सकते, चलो कोई और तरीका है।
कोई और तरीका सिर्फ ये कि जो फिर हम अपने, जैसे अब मेरे बच्चे, मैं अगर देखूं मेरा एक बच्चा कम है और एक ज्यादा है, तो बराबर हिस्सा देने के बाद मैं उससे इजाजत दे के अगर इसको देना चाहूँ तो दे सकती हूँ।
अच्छा, अब ये इसके अंदर देखें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि फिर ये नहीं, क्योंकि हम विरासत में से तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, अब उसको फॉरगेट अबाउट इट, वो तो ऐसी चीज है कि उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता अब, लेकिन हमने इसको देना भी चाहते हैं, अब क्या करेंगे फिर अपनी जिंदगी में ये काम हो सकते हैं।
हाँ राइट, हम
ठीक है जी, हाँ ये बात को नोट कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में फिर ये काम करेंगे। मैं देख तो रही हूँ कि भाई उसकी माली हालत सही नहीं है, तो मैं क्या मरने का इंतजार करूं कि उसका कुछ बनेगा, नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, फिर मैं अपनी जिंदगी में मैं ये करूंगी कि मैं बराबर बराबर बच्चों में तकसीम कर दूं, या मैं अपने बच्चों से थोड़ा पूछ के उनकी इजाजत से कि अगर आप लोग इजाजत दें तो इस बच्चे को थोड़ा कुछ ज्यादा दे दिया जाए, क्योंकि इसके पास नहीं है इतना, और वो अपनी दिल की खुशी से ये इस बात की इजाजत दें, तो फिर अदरवाइज जिंदगी में क्या लागू होगा। जी आप बताएंगे कि, यास्मीन आंटी आप बताएंगे कि जिंदगी में कौन सा कानून लागू होगा, विरासत का कानून या कौन सा कानून?
विरासत तो हमारे मरने के बाद मिलती है ना?
जी बिल्कुल,
विरासत जब मिलेगी जब हम मरेंगे,
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जिंदगी में कैसे आप तकसीम करेंगे, कौन से कानून के तहत तकसीम करेंगे आप अपनी जो जो भी आपके पास माल है? हाँ जी, तो जिंदगी में फिर मैं लड़के को दो हिस्से दूं और लड़की को एक दूं? अच्छा ये भी मैं अब आपको बताती हूँ, देखें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि जब आप जिंदगी में आप बच्चों के अंदर विरासत, नहीं कहूंगी ये मैं विरासत का वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कभी मैं जिंदा हूं थोड़ी अपनी विरासत में बांट रही हूँ, ये तो बेवकूफी की बात होगी ना, विरासत तो होती ही वो है जो मरने के बाद है, अब मैं इस वक्त जिंदा हूं, इस वक्त मैं अपना माल चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों में तकसीम करूं, कौन सा कानून लागू होगा इसमें, क्या विरासत का होगा, कैसे विरासत का होगा भाई, अभी तो आप मरे ही नहीं है तो विरासत का कैसे होगा, अब कौन सा होगा, इंसाफ का भी नहीं आप कह सकते कि इंसाफ का वो, क्योंकि वो भी इंसाफ है जो विरासत का, जो जब इंसान मर जाता है तो वो भी इंसाफ है, ये नहीं कह सकते कि, मगर इस वक्त कौन सा होगा कि इक्वल सबके साथ डीलिंग की जाए, और ये इस वक्त इंसाफ बनता है, इस वक्त विरासत का कानून लगाना जिंदगी में ना इंसाफी है। ठीक है, इस वक्त क्या है, बराबर के हिस्से सबको दिए जाएं, जिनका मैं आपको बता रही हूं कि उन्होंने कहा हमारे मरने के बाद दोनों को इक्वल मिलेगा, तो ये मरने के बाद तो पॉसिबल नहीं है, मरने के बाद अगर ये बात करेंगे तो ये गुनाह है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में चाहें और बराबर बराबर दोनों को, क्या हमें बेटा बेटी दोनों अजीज हैं, इकलौते हमारे बेटा बेटी सिर्फ हैं बस, और कोई हमारा है नहीं, इनको मैं बराबर देना चाहती हूँ, जिंदगी में दे देंगे, बिल्कुल ठीक है, तो जिंदगी में कौन सा कानून लगेगा, बराबरी का, सबको बराबर दिया जाएगा और यही इंसाफ है। जिंदगी में अगर विरासत का कानून लगाया तो वो क्या इंसाफ होगा, नहीं, वो ना इंसाफी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए ना टेस्ट में तो फिर आप लोग उलट पुलट ना जवाब दीजिएगा, जिंदगी में अगर विरासत का कानून लग गया तो वो ना इंसाफी है। आप ये नहीं करेंगे कि लड़के को दो हिस्से और लड़की को एक हिस्सा। जी मैं बाद में तो उन्होंने देने नहीं है, मैं अपने सामने सामने जरा दिला दूं तो मैं लड़के को खुद ही दो हिस्से बांट के कर दूं, लड़की को। ये आप नहीं कर सकते, ये विरासत का कानून है। विरासत का कानून तभी लागू होगा जब आप मर जाएंगे, अभी विरासत का कानून नहीं लग सकता। समझ आ गई? जब जिंदगी के अंदर आप कह रहे हैं गरीब है तो ज्यादा दे सकते हैं, अव्वल तो सबसे पहली बात यह कि सबको इक्वल मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा, किसी को इस वजह से कि कोई ज्यादा है कोई कम है इसके ऊपर नहीं। हाँ, जब आप ये सोचते हैं कि ये बहुत गरीब है और इसको ज्यादा देना चाहिए, तो आप दूसरों की इजाजत से उसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब दूसरे भी इस चीज के ऊपर राजी हों, क्योंकि अदरवाइज ये उनके साथ कहीं ना इंसाफी ना हो जाए, क्योंकि जिंदगी में सबको इक्वल देना ये इंसाफ है। तो ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जिंदगी के अंदर आपको सबको, अगर औलाद को देना है तो सबको इक्वल देना, बाकी किसी को भी देना तो दे दे, उसमें इक्वल की जरूरत नहीं है। बाकी आपने बहन को देना है, भाई को देना है, किसी और रिश्तेदार को देना है, कितना भी देना दे दें, सारा आपने चैरिटी करना है, सारा आपने कैंसर हॉस्पिटल को देना है, वो भी दे सकते हैं, तो फिर सबको इक्वल देंगे। लेकिन संस से पूछ के फिर आप डॉटर्स को दे सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई उनको ही, उनके ऊपर ही सारा खर्चा किए जा रहे हैं और बेटों को कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं। यहीं पे फिर देखिए ना, जेलसीज होती हैं, हसद है, एक दूसरे से नफरतें हैं, और जब माँ बाप इस किस्म की नाइंसाफियां करते हैं तो आगे से औलाद जो होती है उनमें कभी इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं देंगे तो बच्चे आपस में निफाक होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपस के अंदर उनके बहुत एक दूसरे के साथ, फिर कहते हैं लड़ते झगड़ते हैं, फलानी फैमिलीज में बहुत झगड़े। अगर आप उसकी जड़ देखें तो उनके बड़ों ने नाइंसाफियां की हुई कहीं ना कहीं। जी, जिंदगी में विरासत कानून नहीं होगा। इफ सन से छुपा के कोई दे तो नहीं, ये अलाउड नहीं है, छुपा के देने की बात ही नहीं है। देखें, जब देने ही, अपनी जिंदगी में वैसे तो आप किसी को भी दें, लेकिन जो औलाद है ना उसके अंदर इंसाफ करने की जरूरत है। कि इंसाफ के साथ इंसाफ क्या है कि सबको इक्वल इक्वल दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप 2 रुपए इसको देंगे तो 2 ही उसको देंगे और 2 ही उसको देंगे और 2 से 2.5 ना हो जाए और 2.5 से 2.75 ना हो जाए, ऐसे नहीं है। मगर जैसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं इस वक्त, हम अपने बच्चों के ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बेटों के ऊपर तो मैं बहुत खर्च करूं और जब बेटियों का मामला है तो फिर कोई बात नहीं, इनकी तो शादियां ही हो जानी, इनको पढ़ा लिखा के क्या करना है, इनके ऊपर पैसे खर्च करके क्या करना है, इनको देके क्या करना है, वो नहीं होना चाहिए। इवन इस वक्त भी, बाद में तो आप जायदादों की तो बात कर दो, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में आप बात कर रही हैं ना, मैं तो छोटी छोटी चीजों में भी कह रही हूँ कि आप ये नहीं कर सकते। उसको अच्छा खाने को देना, उसको ब्रांड नेम पहनाना, और इसको तो जो मर्जी कर लो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं हो सकता। ऑफर टू सन्स टू इफ दे से नो देन इट्स नहीं, अगर वो मान जाते हैं इस बात के ऊपर, ऑफर की बात ये नहीं है, अगर वो इस बात के ऊपर मान जाते हैं, राजी हैं कि हाँ वाकई हमारी बहन को इस तरह से है और क्या इसको दे दिया जाए और उसके ऊपर सब राजी हैं, तो फिर उसको दे दिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों से पूछेंगे क्या मैं इसको दे दूं, क्या मैं फलानी मस्जिद बनवा दूं, क्या मैं ये फला रिश्तेदार को दे दूं। ये बाकियों को देने में नहीं, बच्चों से पूछना होगा। आपस में अगर किसी को देना तो तब पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक से ना इंसाफी ना हो जाए, एक के दिल के अंदर कोई हसद या रकाबत के जज्बात ना आ जाए। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अगर किसी के नाम ना लगाएं, सिर्फ लिख दें कि मेरे बाद ये इसका होगा, क्या ये जायज है? यही तो वसीयत है, यही तो वसीयत है, और क्या, नाम लगाने से थोड़ी होता है। नाम लगा दें तो बल्कि अच्छा, अपनी जिंदगी में नाम लगा दिया तो उसको दे दिया, वसीयत और होती क्या है? लिख के ही छोड़ दिया ना कि भाई ये फलाने को मिले। अपनी जिंदगी में अगर, जब आप बांट रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर तकसीम कर रहे हैं, तो फिर तो नाम लगाएंगे ही, फिर तो किसी ना किसी के नाम लगाएंगे। आप बच्चों के सबके इक्वल इक्वल नाम लगा दें चीजें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चले, कह रहे हैं क्लास स्टार्ट हो गई है, चले इंशाल्लाह ताला अब हमारी किताबुल हिदात, ये हिबा के बारे में रह गई है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मुझे कंफर्म कर दें क्लास स्टार्ट हो गई। जी अगर हो गई है तो फिर हम चलते हैं, अदरवाइज जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा चलें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.